ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में 4 आतंकियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान 16,37,000 से अधिक फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड को रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस दशक के अंत तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बनाने का लक्ष्य है। 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। और राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में 4 आतंकियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। न्यायालय ने 2 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। पटना व्यवहार न्यायालय ने इस मामले में 4 दोषियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। दोषियों के अधिवक्ता इमरान घनी ने बताया कि न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद नुमान अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह, हैदर अली और इम्तियाज आलम की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए उम्र कैद में बदल दिया, जबकि उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैसी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
आज गांधी मैदान बम ब्लास्ट में 6 अपील जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी, जिसकी जजमेंट रिजर्व था, आज उसका जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है। 6 लोगों में 4 लोग को फांसी की सजा हुई थी और 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर आशुतोष कुमार की खंडपीठ से आज वो जजमेंट डिलीवर हुआ है। जिन लोगों को फांसी हुई थी उनको आजीवन कारावास हुआ है, 30 साल की सजा सुनाई गई है। और जिन लोगों को आजीवन कारावास हुआ था उनकी अपील एज इट इज डिसमिस हुई है।
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक सिलसिलेवार 7 बम धमाके हुए थे। इनमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 85 से अधिक लोग घायल हो गए थे। प्रदेश में पिछले 4 वर्षों के दौरान 16,37,000 फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। वहीं 40 लाख लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के आधार सत्यापन और ईकेवाईसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में 8,35,00,000 से अधिक उपभोक्ताओं के पास राशन कार्ड हैं। 55 लाख नए लोगों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए हैं। श्री कुमार ने बताया कि 61% उपभोक्ताओं का ईकेवाईसी किया जा चुका है और उनका बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ है।
हम लोगों ने अभी ईकेवाईसी का भी काम कराया जा रहा है। ईकेवाईसी में ऑलरेडी 61% लोगों का, कितने भी लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे 8.35 करोड़ जो कार्डधारी हैं, उन सभी लोगों का हम लोग बना रहे हैं। उसमें 5 करोड़ से ज्यादा यानी 61% लोगों का ऑलरेडी ईकेवाईसी हो गया, बाकी लोगों का भी हो रहा है। कुछ लोग जैसे बाहर काम कर रहे हैं तो ये ईकेवाईसी कराने के क्रम में हम लोगों का लगभग 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों का हटाए हैं, लगभग 55 लाख लोगों का नाम जोड़ा भी गया।
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि खरीफ मौसम के लिए इस वर्ष नवंबर में धान की खरीदारी शुरू होगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में 30.8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। श्रीमती सिंह ने बताया कि इसमें मिल और पैक्स के माध्यम से 98% तैयार चावल प्राप्त हो चुका है।
खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में राज्य के रैयती तथा गैर रैयती किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 30,80,000 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। खरीफ विपणन मौसम 24-25 में भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए साधारण धान 2300 रुपया प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान 2320 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह सिलिकॉन कूटनीति का युग है और भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप से लैस किया जा सके। प्रधानमंत्री आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने इस दशक के अंत तक देश के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इससे 60 लाख नौकरियां पैदा होंगी।
भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं।
श्री मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले देश मोबाइल फोन का आयात करता था, लेकिन अब यह मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन चुका है।
डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें अफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इम्पोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं।
इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया और दूरसंचार मिशन के माध्यम से नागरिकों के हाथों में तकनीक पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास इस दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। झारखंड के पार्टी प्रभारी जय प्रकाश नारायण यादव की अध्यक्षता में रांची में पार्टी नेताओं की हुई बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद श्री यादव ने कहा कि चूंकि उनकी पार्टी गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी है, इसलिए पार्टी राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता चाहती है। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला जल्द ही तय किया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि राजद ने सीटों और उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, जिसे पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पास भेजा जाएगा। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली निशुल्क दी जाएगी। आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि देश भर में बिहार में सबसे महंगी बिजली मिलती है।
बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे।
ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत अगले वर्ष तक 23,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि योजना के तहत 6,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शुरू हो चुका है।
राज्य सरकार ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत, अभी के समय में हमारा विभाग अभी जिन टेंडरों को फाइनल किया है वो लगभग 6,000 है जिसकी काम की शुरुआत होनी है, और लगभग हम 10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में इस फाइनेंशियल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे और चुनाव के पहले पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे।
मॉनसून के कमजोर पड़ने के कारण राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय के खोदावंतपुर में सबसे अधिक 26.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 13 और 14 सितंबर को राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की परिस्थितियां बनेंगी।
13 और 14 सितंबर को पूरे राज्य के ऊपर ज्यादातर जगहों पर वर्षा का पूर्वानुमान है। तीव्रता हल्के से मध्यम रहने का पूर्वानुमान है, उसके बाद तीव्रता कम हो जाएगी। इसके बावजूद राज्य के कई जिलों में बादल बनते रहेंगे और रुक रुक कर हल्की वर्षा अथवा बूंदाबांदी होती रहेगी।
प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 31 नए मामले मिले हैं। केंद्र सरकार ने कौशल भारत कुशल भारत योजना के नाम पर चल रही धोखाधड़ी के प्रति लोगों को आगाह किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि एक फर्जी वेबसाइट कौशल भारत कुशल भारत योजना के नाम पर नौकरी देने का वादा कर रही है। पीआईबी ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना संचालित नहीं कर रही है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आज से राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी अंडर 19 प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। आज खेले गए मैच में मधुबनी सिवान भागलपुर सीतामढ़ी वैशाली बक्सर पश्चिम चंपारण पटना और सारण की टीमों ने जीत हासिल की। पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा थाना क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने 10,000 रूपये मूल्य के जाली नोट के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 25,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में 4 आतंकियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान 16,37,000 से अधिक फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड को रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस दशक के अंत तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बनाने का लक्ष्य है, 60,00,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। और राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।